राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से आप सबका आज सायंकाल के सत्संग में स्वागत है। आभार प्रकट करते और धन्यवाद करते हैं शर्मा परिवार का। माता शांति देवी की आशीर्वाद से सीमा जी और राजकिशोर जी ने अपने बालक कुंज और पुत्री छवि के पहले जन्मदिन के अवसर पर आप सब लोगों को निमंत्रण दिया है और हमको हरि कथा करने की सेवा दी है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप सबको बुलाया क्यों है? बच्चों का जन्मदिन था, आपको क्यों बुलाया? वैसे शादी होती है, हम सबको बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? प्रायः मन में ये आता है, उधर जाएंगे कुछ गुब्बारे फाड़ेंगे और फिर बहुत अच्छा पार्टी का व्यवस्था होगी और उसके अंदर भोजन करेंगे, खाएंगे, पिएंगे और चले आएंगे। लेकिन असल में बात यह नहीं है। असल में बात यह है, हमारे पूर्वज बुलाते थे जन्मदिन के ऊपर सगे संबंधियों को, मित्रों को, बंधु बांधुओं को और साधु संतों को, और कहते थे कि भगवान को प्रार्थना करना कि ये बच्चे जो अभी अभी अपना जीवन शुरू कर रहे हैं, बहुत लंबी उम्र इनकी है, ये सफल अपना जीवन कैसे जीवन में जिए, आप सब मिलकर इसके लिए प्रार्थना करो। ये इसका उद्देश्य हुआ करता था। विवाह में भी यही उद्देश्य हुआ करता था कि अब ये नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, आप सब लोग जो इतने आए हो। और फिर तो यज्ञ में बैठते थे ना, यज्ञ होता था तब तो विवाह होता था ना, कि भगवान और देवताओं को भी बुलाया जाएगा आशीर्वाद देने के लिए। तो आप यहां आए हो इन बच्चों के लिए भगवान को प्रार्थना करके आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि आप इनके मित्र हो, आप इनके हितेशी हो, आप इनके बंधु हो, इसलिए आपको बुलाया है कि ये चाहते हैं। इतने सारे सामूहिक लोग जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से उन बालकों का भविष्य उज्ज्वल होगा। ये इसके पीछे रहस्य है। ये कोई पूछे कि ये जन्मदिन मनाने की प्रथा कहां से आई, हरे कृष्णा, तो ये तो गोपाल का जन्म हुआ था जब नंद बाबा के घर में, तो नंद बाबा ने एक उत्सव मनाया था, उसका नाम ही नंद उत्सव है। और नंद उत्सव की विशेषता ये थी कि सारे संबंधी ग्वाल बाल सब वहां आए थे, और आने के बाद नंद बाबा ने दिल खोल कर उत्सव मना के सबको बहुत बड़ा सम्मान किया था। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो ये राजकिशोर जी है जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण शर्मा जी, हरे कृष्ण। तो ये जन्मदिन मनाने की प्रथा हमारी क्या है, ये तो नंद बाबा से सीखना चाहिए। गाय दान दी थी, दूसरों के बच्चे दूध पिएंगे तो मेरे बच्चे सदा मक्खन खाएंगे, ये उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य हुआ करता था ये जन्मदिन मनाने। और हर वर्ष उस दिन, ऐसे भागवत में आपको उल्लेख मिलेगा, आज बलराम जी श्री कृष्ण के साथ नहीं गए थे, कब, जब कालिया नाग का दमन करना था। बोलो क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उसका जन्मदिन था, उस दिन जन्मदिन की तिथि थी, इसलिए माँ ने भेजा नहीं था। तो तब उनकी माता उनका जन्मदिन मनाया करती थी, शाम को सब बालक आते थे, भोजन करते थे, नाचते थे, कीर्तन करते थे, लेकिन बड़े बुजुर्ग आते थे, भगवान को प्रार्थना करते थे, समाज बैठता था और भगवान के गुण गाते थे। क्यों? कि भगवान इन बालकों के ऊपर आपकी कृपा हो, हम सब आपको प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन और भविष्य उज्ज्वल हो, मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये इसके पीछे रहस्य हुआ करता था। पाश्चात्य संस्कृति ने फिर काटना हमको सिखा दिया कि केक को काट दो, मोमबत्ती को बुझा दो। अरे हम तो दीप जलाना सिखाते, बुझाना कहां से आ गया? ये बुझाना हमारी संस्कृति में नहीं है। जलने दो अच्छी तरह से, दीप जलने दो, ज्योत जलने दो, ज्योत को जलाओ और जगाओ और बांटो, काटो मत, बांटो। तब तो दूध दही मक्खन बढ़ता था, और इतना दूध दही मक्खन बटा था नंद बाबा के घर के बाहर, इतना दूध दही मक्खन बटा था कि चलते हुए मेरे जैसे आदमी फिसल के गिर पड़े और दूसरे तालियां बजा के उसका मजा ले रहे थे। ऐसे लिखा है भागवत में, मैं भी कह रहा हूं भागवत में लिखा है ऐसे। और ये भी लिखा है कि नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के आने के ऊपर इतनी उदारता के साथ उत्सव मनाया था कि लक्ष्मी साक्षात पूरे ब्रज के अंदर ऐसे फैल गई कि आज लक्ष्मी कह रही है कि मेरा नाथ माधव आया है। माधव का अर्थ होता है लक्ष्मीपति, माँ का मतलब लक्ष्मी होता है, माधव आया है। तो ब्रज को ऐसा दिखना चाहिए कि गली गली में लक्ष्मी होनी चाहिए। तो लोग दान दे के लेके जा रहे थे, ब्रजवासियों का भाव है। किसी आदमी को दान मिला था, क्या दान मिला था, रुपये मिले थे, ले जा रहा था। उसने बोला क्या दान मिला है आपको, बोला रुपये मिले। अरे काहे के रुपये, चांदी के कि मूर्ख है क्या, उधर तो सोने के रुपये बट रहे थे। वो चांदी के रुपये उधर फेंक दिए, उधर गया सोने के रुपये लेके आया। लेके जाए उसने बोला क्या लेके आए, नंद बाबा ने क्या दिया, बोला गोपाल के आने की खुशी में सोने के रुपये बांट रहा है। ये मूर्ख सोने के रुपये लेके आ रहा है, उधर तो हीरे जवाहर मिल रहे, उधर ही फेंक दिया गली में। और ब्रज की गली गली में हीरा मोती ऐसे बिखरा हुआ था, नंद बाबा के गोकुल में हीरे मोरी बिखरे हुए थे। इसका अर्थ क्या है कि दुनिया का सारा धन जो है निछावर करके हम बच्चों के ऊपर से फेंक देंगे, ये भगवान ने धरोहर हमारे को दिए, इसका पालन पोषण हमको करना है। लेकिन आप सब लोग आज इसके लिए प्रार्थना करो कि इनका जीवन मानव जन्म मिलता कैसे है। अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, अंतगतम पापम, जब आदमी के पाप समाप्त हो जाते हैं, अंतगतम पापम, जब पाप समाप्त होते हैं, पुण्य कर्मणाम, जब पुण्य कर्म उदय होता है, तब मुश्किल से कोई मानव का जन्म प्राप्त होता है। मानस जन्म पाना बच्चों का खेल नहीं। जब जब जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का होता मेल नहीं, बहुत जन्मों के पुण्य कर्मों का जब मेल होता है ना, तब मानव जन्म मिलता है। और जब पाप नाश हो जाते हैं तब मानव जन्म मिलता है। तो मिलने के बाद क्या करना चाहिए, जरा मरण मोक्षाय, तो फिर यह सोचना चाहिए कि इस बार बालक जन्म तो मिला है लेकिन बूढ़ा होना पड़ेगा। क्यों भाई मालपानी जी, गणेश जी बूढ़ा होना पड़ेगा,
एकदम होना पड़ेगा।
हो गए कि नहीं,
मैं 70 साल क्रॉस कर गया।
हरे कृष्ण, एक दिन आप भी 1 साल थे, आपका भी जन्म कन्हैया लाल ने मनाया होगा।
नहीं,
कन्हैया लाल ने मनाया था, इसलिए आपको क्या पता,
मेरे को पता नहीं।
आप छोटे थे, हम तो थे वहाँ। हम झूठ नहीं बोल रहे, किसी और जन्म में हुए रहे होंगे वहाँ। हरे कृष्ण, जन्म मानव मिलता है पुण्य कर्म जब उदय होते हैं तब, और पाप क्षीण होते हैं तब। तो फिर मानव को करना क्या चाहिए, दूसरा गीता का श्लोक उसके साथ जुड़ा हुआ है, जरा मरण मोक्षाय, जरा बुढ़ापा मरण मृत्यु मोक्षाय, उससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। इतने सारे जन्मों का हमने पुण्य इकट्ठा किया तब मानव जन्म मिला है, अब ये मौका नहीं हमको गंवाना है, ये चांस है, ये हमको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। ये मानव जन्म मानव के एक सेल लगी हुई है, बहुत सस्ता माल बिक रहा है भगवान को प्राप्त करने का, जो और किसी जन्म में उपलब्ध नहीं है। जरा मरण मोक्षाय, अब इसमें यही विचार करो कि इस बार तो आए हैं, जरूर एक बार बूढ़ा होंगे, लेकिन फिर दोबारा हम इस दुनिया के अंदर इस संकट में फंसना नहीं चाहते। तो क्या करना चाहिए, यतन्ति, तो यतन करना पड़ेगा। दूसरा शब्द इसके बाद है यतन्ति, जरा मरण मोक्षाय, दृढ़ यतन की दृढ़, वो यतन करते हैं। यतन करने का मतलब क्या है, सावधान होते हैं, सावधान होते हैं। किस बात से, कि दोबारा कोई गलती न हो जाए। दोबारा एक कोई त्रुटि न हो जाए। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, इसलिए वो जन्म जन्म मना के सबको बुलाते थे। बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानुष तन मिला है। अरे भाइयों, हमारे मित्र हो, बंधु हो, साथी हो, साथ काम करने वाले हो, रिश्तेदार हो, आओ इन बच्चों को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो आप नहीं दे सकते हो, लेकिन भगवान को प्रार्थना तो कर दो आशीर्वाद। आप सब इतने सब लोग मिलकर भगवान को प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से इन बालकों का जीवन सुखमय, भक्तिमय और उज्जवल होगा। तो ये भाव मनाओ, लेकिन ये भाव हृदय के अंदर जरूर बसाओ। और फिर किसी भक्त पुरुष के घर में किसी का जन्म हो जाए तो ये समझना चाहिए। आज कहीं शाम को सत्संग कर रहे थे, छोटा कोई 3-4 साल का बच्चा था, खड़ताल उठा के ऐसे कीर्तन करने लगा। हमने बोला बेटा कीर्तन करो, और उसको पूछा नाम क्या है, बोला नाम मेरा वेद है। वैदिक है, बोला वैदिक है, बोला वैदिक मेरा नाम है। बोला तेरा नाम ठीक है, तुम वैदिक है तो वेद के अनुसार तुम ठीक काम कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। लेकिन मैंने कहा ये एक जन्म की इसकी शिक्षा नहीं है, 3-4 साल का बच्चा बैठ के कीर्तन करे ये एक जन्म की शिक्षा नहीं है। कभी कभी हम बच्चों को कहते हैं कि तुम जाओ शोर कर रहे हो, और हम समझते हैं हम बड़े हैं ये छोटे हैं, लेकिन आपसे पहले ये भक्ति करके आए हैं तब आज इनको भक्ति याद आ रही है। ये आपसे सीनियर है, उम्र में छोटे दिखते हैं लेकिन ये आपसे सीनियर हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो कीर्तन कर रहा है, उसके बाप को कीर्तन करने ही नहीं आता। तो वो प्रणाम कर लेता है, बच्चा प्रणाम कर लेता है, बड़े से झुकने में बहुत तकलीफ होती है बड़े को है? तो ये समझना चाहिए। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछता है, अरे किसी तरीके से हमने भगवान की आप कोई शुरुआत तो की थी धर्म के ऊपर चलने की, योग अभ्यास करने की, पूरा नहीं कर पाए। फिर ऐसा तो नहीं मिला कि संसार के लोगों की तरह न दाम मिला न राम मिला, दुनिया भी नहीं मिली, भगवान भी नहीं मिला, न इधर के नए रहे उधर के रहे, ऐसे तो नहीं कहीं हो जाएगा। भगवान ने कहा, भगवान ने बहुत बड़ा उदारता के साथ कहा, कृष्ण जब उत्तर दे रहे इस प्रश्न का अर्जुन को, तब एक शब्द कह रहे हैं, तात मेरे प्रिय, दुर्गतम न, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, जो कभी भी अच्छा काम करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। तो क्या होता है उनका, सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्यो अभिजायते, सुचीनाम श्रीमताम गृहे, श्रीमताम का मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा हो, श्रीमताम का मतलब धनी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं ना तो भगवान बोलते हैं, उसके आगे लगा दिया सूची और फिर लगा दिया श्री, सूची का मतलब पवित्र, सुचीमताम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्यो अभिजायते। योग में किसी तरीके से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा और बीच में जिंदगी समाप्त हो गई, जिंदगी तो जन्म होगा ऐसे किसी संपन्न धर्मात्मा धनी के घर में। धर्मात्मा धनी आगे भगवान ने लगा दिया, केवल धर्मात्मा धनी नहीं लगाया, ऐसे हिरण्य कश्यप सबसे बड़ा धनी था, लेकिन प्रहलाद उदक तो भाग्य से पैदा हो गया, लेकिन धर्मात्मा धनी शब्द लिखा है, सुची नाम श्रीमताम गे, धर्मात्मा धनी के घर में जन्म होगा। उसका लाभ क्या होगा, उसको गधा मजदूरी का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। लोग तो संसार में गधा मजदूरी कर, सुबह शाम तक गधा मजदूरी करके मर गए दो टाइम की रोटी कमाने के लिए, उसको इस चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये व्यवस्था पहले से ही वो अपने कर्मों से करके आया। फिर वो क्या करेगा, जहां काम छोड़ा है वहां से शुरू करेगा। और ये छोटे बच्चे 1 साल के, आप बड़े 73 और 75 साल के लोगों को बैठ के आज सत्संग सुनवा रहे हैं कि नहीं सुनवा रहे हा? कभी ऐसा विचार किया है कि इन बच्चों ने आपको आज कीर्तन और सत्संग सुनने के लिए बाध्य किया कि नहीं किया? तो इस बच्चों के वजह से हो रहा है ना, नहीं क्यों माता जी, ऐसे है ना, पोता पोती आपको भी बिठा के कथा सुना रहे हैं ना। 1 साल के अभी से कथा सुनाना शुरू किया तो आपका जीवन तो सफल हो ही गया पक्का, ये बात समझ में आनी चाहिए कि इतने छोटे बालक आते ही आपको कैसे भाई आपको क्या पता कि हम भक्तों को बुलाएंगे जन्मदिन के ऊपर और भगवान का कीर्तन करेंगे वह और भगवान का प्रसाद खाएंगे, ये कैसे विचार आया। ये इन बच्चों के पुण्य कर्म ऐसे हैं कि आप सबको आज बैठ के भगवद गीता सुनने के लिए मजबूर कर दिया, नहीं तो आप पता नहीं कहाँ घूमते होते। जी शर्मा जी सर जल्दी आ गए, ये तो एक दिन एडवांस में आते हैं, दूसरे 12:30 बजे आए तो दूसरे दिन पहले आ गए, अर्ली आ गए। हम कभी हमारी क्लास में लेट जाते थे तो प्रोफेसर कहा था यू आर टू अर्ली फॉर नेक्स्ट क्लास। तो दूसरे दिन के लिए तो बहुत सवेरे आते हैं। ये इन बच्चों का भाग्य बता रहा है। सुजीनाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनाम कुले भवती धीमताम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अगर योग का अभ्यास शुरू किया 25-1% योग किया 75% रह गया तो फिर किसी संपन्न धार्मिक धनी के घर में जन्म होगा, वहां से वो और अपना अभ्यास शुरू करेगा। अथवा का मतलब अगर उसने 90% पूरा किया है बाकी थोड़ा सा बच गया है तो योगिनाम कुले भवती धीमताम। योगिनाम का मतलब साधु के घर में, किसी गुरुजनों के घर में, साधु के घर में, लेकिन कैसा गुरु? बोला धीमताम, बुद्धिमान के घर में। ऐसे भगवान को बुद्धिमतान क्यों कहने की पड़ गई? योगी और धीमतान दो शब्द क्यों जोड़ दिए? क्योंकि भोगी योगी बहुत है, बुद्धिमान योगी बहुत कम है, भगवान पहले से जानते थे, दो शब्द जोड़ के बात कर रहे हैं। योगी नाम धीमताम, बुद्धिमान योगी के घर में। और बुद्धिमान कौन है? अर्जुन ने पूछा था बुद्धिमान कौन है, स्थित प्रज्ञ कौन है, जिसकी स्थिति बुद्धि, बुद्धि किसकी स्तर है, स्तर बुद्धि कौन है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इस संसार में उसकी पहचान क्या है। तो ऐसा व्यक्ति, फिर किसी ने मुझे कहा प्रभु जी योगी के घर में जन्म कैसे लगा, योगी तो शादी ही नहीं करता है, बाबा ही होता है। तो भगवान ने ऐसे कैसे कह दिया? इसका अर्थ है ऐसे गुरु के कुल में जन्म लेगा। गुरु का कुल शिष्य और पुत्र समान होते हैं, शिष्य और पुत्र दोनों समान माने जाते हैं। ऐसे गुरु के कुल में जन्म लेगा। हम गुरुकुल पहले स्कूल को बोलते थे, हमारी स्कूल की पद्धति जो थी वो गुरुकुल की थी, मतलब गुरु का कुल। कुल किसको कहते हैं? खानदान को कहते हैं। तो गुरु का खानदान हमारा कुल ये है, तो गुरु के कुल में जन्म होता था। जैसे ये सब हरे कृष्णा के भक्त बैठे हैं, ये प्रभुपाद गुरु के कुल में इनका जन्म हो गया। इसको बोलते हैं योगी नाम धीमताम कुले भवती। ऐसे किसी महापुरुष के कुल के अंदर उसका प्रवेश होता है, जहां उसको बाकी 10% रही हुई चीज है उसको पूरे करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसमें उसकी पहचान क्या है? तब कहते ब्रह्म शब्द अति वर्तते, अतिक्रमण करता है ब्रह्म शब्द का। इसका अर्थ क्या है कि साधारण कर्म कांड के पूजा पाठ को प्रणाम करता है और दो काम करता है, एक तो करता है यत्न और एक करता है प्रयत्नाद यतनाश्च, प्रयत्न भी करता है यतन भी करता है। यतन करता है कि गिर न जाऊं और प्रयत्न करता है कि आगे बढ़ूं। दो शब्द भगवान ने सब जगह दो दो शब्द लिखे, एक शब्द नहीं लिखा है। कृष्ण के इस गीता के शब्दों के अंदर इतना रस है, कभी समझ में आए? प्रयत्नान यतमानश्च, प्रयत्न करेगा आगे बढ़ने का लेकिन यतन करेगा कहीं नीचे न गिर जाऊं। यत्न करना का मतलब सावधान होना और प्रयत्न करने का मतलब प्रयास करना। क्यों ऐसे करता है? क्योंकि उसको मालूम है बहुत सारे ऋषि मुनि भी बहुत आगे बढ़ने के बाद भी गिरने की संभावना इस संसार के अंदर है। कभी भी आदमी थोड़ी सी गलती से भी मानव जन्म के लक्ष्य से चूक सकता है। सावधानी सदा हमको सावधान रहना चाहिए, सदा सावधान रहना चाहिए संसार के अंदर। यतन से दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत धारण करते हैं और यतन करते हैं कहीं हमारा व्रत टूट न जाए। ये हर साल जन्मदिन ऐसे शर्मा जी मनाना, कम से कम एक साल में दोबारा 12 बजे से पहले तो आना पड़ेगा। तो ऐसा तो दृढ़ संकल्प कर लो, इसको बोलते हैं दृढ़ व्रत धारण करना। कि दृढ़ व्रत धारण करते हैं, किस बात का दृढ़ व्रत धारण करते हैं? यतन करने का। क्या यतन कराएंगे? सततम कीर्तनयन्तो माम यततन से दृढ़व्रता। सततम कीर्तनयन्तो, अभी तो पहले 90% तो करके आए आगे प्रयास, 10% में क्या करना है बाकी? बोला वो रिचुअल सारे छोड़ देंगे, वो घंटी बजाना और ये बाकी के काम छोड़ के क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे। कब करेंगे? सततम कीर्तनयन्तो माम। और सततम का मतलब क्या है? सदा के लिए। सतत और सतत का अर्थ ये है, तार तंबूरा लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। ये कौन बैठी छोटी सी बच्ची है? कौन है, क्या नाम है? सृष्टि। अच्छा, छोटी सी सृष्टि है। वैसे ये हम जिस ब्रह्मांड में रहता है ये सबसे छोटी सृष्टि है भगवान की, बाकी और बहुत बड़ी बड़ी सृष्टियां हैं। इससे कोई मेरे पास वो कुंज को लाया था, कुंज को, कहता है ये कीर्तन के बगैर सोता नहीं है। अब उसको क्या पता कीर्तन क्या है, इसलिए सततम कीर्तन, वो कहता है सदा के लिए कीर्तन कर रहा। घर वाले तो करेंगे नहीं, टेप लगा के रख दिया करो। कीर्तन चलता रहना चाहिए, कीर्तन चलता रहना चाहिए। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अरे जन्म से पहले प्रहलाद ने अपनी माँ कयादु के गर्भ में नारद का सत्संग सुना था और हिरण्यकशिपु के डर से नहीं डरा था और भगवान के भक्ति में अटल रहा था, उसको कोई नहीं हिला सका। जन्म से पहले उसने सत्संग सुना था। कितना बड़ा, हमारी संस्कृति कहती है कि गर्भवती नारी को सदा भगवान के सत्संग को करना चाहिए ताकि बच्चा गर्भ के अंदर साधु भक्त बन के बाहर संसार में प्रहलाद की तरह बन के आ जाएगा। और प्रहलाद किसको बोलते हैं? जो सबको आह्लाद दे, जहां जाए सबको खुश कर दे। आह्लाद, आह्लाद का मतलब आनंद उल्लास दे, जिसको देखने से आदमी खुश हो जाए उसको प्रहलाद बोलते हैं। और प्रहलाद के पीछे शब्द क्या लगता है? भक्त। तो भक्त किसको बोलते हैं? जिसको देखने से आदमी को कम से कम आनंद आ जाए। भक्त देखने से भगवान का नाम याद आए और आनंद आए, उसको भक्त कहते हैं। ये भक्त की पहचान है। ये तो हुआ भक्ति सीखा था, लेकिन अगर आप सद्मार्ग की शिक्षा देंगे तो अभिमन्यु ने अर्जुन से चक्रव्यूह तोड़ना भी गर्भ में सीखा था। तो बड़े स्कूल में जाने के बाद बच्चे आप समझो कि गीता भागवत रामायण पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तब तो कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट करेंगे। ये 5 साल तक उसको जो कीर्तन सुनाना है वो सुना लेना, उसके बाद तुम्हारी बात मानने वाले नहीं है। आजकल की जो ये जनरेशन है नेक ब्रेक जनरेशन है, गर्दन ऐसे झुका हुआ होगा सारा दिन ऐसे कंप्यूटर कैलकुलेटर, गर्दन ही झुका हुआ है, नेक ब्रेक जनरेशन है ये तब तो इंटरनेट के ऊपर बैठेगा। अब जो संस्कार डालना है डाल दो, अब संस्कार डाल दो। बचपन में टीके लगाते हैं ना, बचपन में ऐसे टीके लगा दो, ये राम नाम की गुट्ठी गुट्टी गोल के पिला दो, कहते हैं राम नाम की गुट्टी पिला दो बचपन में ही। कहते तुमको सुत्ती कैसी पिलाई थी? सुत्ती राम नाम की पिलाई थी हमने, पहले सुत्ती बोलते थे सुत्ती। याद है किसी को? बच्चों को बड़ी बुरी माता जाके सुत्ती पिलाती थी क्या बीमार न हो जाए। ये पुरानी भाषा है, बहुत पुरानी भाषा है, लेकिन राम नाम की सुत्ती पिलानी चाहिए बच्चों को। चारे चारों ओर वातावरण भगवत नाम का होना चाहिए। निश्चित रूप से साल में एक दिन जन्म का दिन आता है, लेकिन उसको साल ग्रह कहते हैं। ये तो कंजूस लोगों ने ऐसे मनाया है। उधार लोग कहते हैं साल ग्रह नहीं, मास ग्रह, हर महीने में इस तारीख के ऊपर मनाना चाहिए। देर देर कम नहीं करनी, जल्दी जल्दी मनाना चाहिए भाई। उत्सव जितना अच्छा होगा, उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सव का अर्थ जहां हमारा सांस ऊपर आ जाए, हा 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 हा, इसको बोलते हैं उत्सव। उत्सव का मतलब ऐसे आदमी ऐसे बैठ बैठे उठ गए, हा हा मजा आ गया, इसको बोलते हैं उत्सव। आदमी गिरा हुआ मरा हुआ एकदम उठ के ऐसे नाचने लगे, उसको उत्सव बोलते हैं। तो वैसे भी आजकल जो आपके रिसेशन और बिजनेस में अप ऊपर नीचे है, सारे ही झुके हुए हो, कभी कभी उत्सव मना ही लिया करो। हा हा करने में बड़ा मजा आएगा, नहीं तो संसार में बहुत दुखी हो रहे हो। हाँ, नहीं तो हाय हाय करेंगे। तो ये उत्सव, और पहले भारत संस्कृति की महानता ये थी, बच्चा करवट बदलने शुरू किया तो स्त्रियों का उत्सव हुआ करता था। अरे बच्चा अपने आप करवट बदल रहा है, अपने आप बच्चा करवट बदल रहा है, बड़ा उत्सव हुआ नंद घर में। यशोदा माँ ने स्त्रियों को बुलाया, अरे हमारा लाला अपने आप करवट बदल रहा है, देखो तो ऐसे गर्दन उठा रहा है, सब स्त्रियां आई हैं। लेकिन कन्हैया को सुला दिया बाहर। कहाँ है? एक बहुत बड़ा छकड़ा था बर्तन रखने का, उसके ऊपर दूध दही रखा हुआ था, उसके नीचे लाला को सुला के, 3 महीने का छोटा सा लाला, और ये छोटे बच्चे थे, उनको कहा कि इसको देखना, रोए तो मुझे बुलाना। अंदर सबको कहती, आइए आइए, आप बैठिए, आप खाइए। कन्हैया बोला, उत्सव मेरा मनाते हैं, मेरे को खाड़ी के नीचे रखा है और माल वो खा रहे हैं। बनाया मेरा जा रहा है उत्सव, मेरी तो लिफ्ट नहीं किया, मेरे को तो गाड़ी के नीचे सुला रहा है, और मेरे ऊपर क्या रखा है? गौ रस मेरे ऊपर रख दिया है, दूध दही मक्खन मेरे ऊपर रख दिया है। अरे रस राज तो मैं हूँ, सारे रसों का राजा मैं हूँ, राजा को नीचे, रस को ऊपर रख दिया। अब दिखाता हूँ मैया को, उत्सव मेरा, और बैठी उधर सबके साथ बात कर रही है। ऐसे पांव को लंबा थोड़ा सा किया, ऐसे एक्सल को लगाया, छकड़ा धड़ाम से नीचे गिरा, सारा रस बह गया। आवाज इतना हुआ कि सब लोग उत्सव से भाग गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वो छोटे से लड़के कहते, क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, इसने पांव से ये गाड़ी गिराई है। ए बोले, झूठ झूठ मत बोलो, इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी गाड़ी कैसे गिराएगा? इसने गिराई है, सकता सूर्य इसमें बैठा था, किसी ने देखा नहीं था। लेकिन उस वक्त किया क्या माँ ने, एकदम कन्हैया को उठाया, उठाने के बाद स्तनपान कराया। स्तनपान क्यों कराया? बच्चा एकदम अगर माँ का स्तनपान करने शुरू करता है, इसका मतलब ठीक है, इसको कोई तकलीफ नहीं। दूध नहीं पिया तो माँ बहुत चिंतित होती है, बच्चा दूध नहीं पीता है। स्तनपान माँ ने कराया, और ये आश्चर्य लगता है कि दामोदर लीला में कृष्ण 3 वर्ष के ऊपर का था, उम्र 3 वर्ष हो रही थी, लेकिन माँ की गोद में बैठ के कन्हैया दूध पी रहा था। 3 वर्ष के कन्हैया को माँ गोद में बिठाकर दूध पिलाती थी। 3 वर्ष के बच्चों को आप में से कोई दूध पिलाती है मेरी माँ? हाँ, स्कूल में टीचर पिलाती है। दूध 5 साल तक जो माँ बच्चे को पिलाती थी, उस माँ को पहले नंबर की माता कहते थे। 5 वर्ष तक जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। आजकल माताएं दूध बच्चे को पिलाती नहीं है। यशोदा माँ तो 3 साल तक तो लिखा है भागवत में पिलाती थी, उसके बाद भी कन्हैया आंख में चढ़ के दूध पीता था। अब आप किसमें दूध पिलाती हो? हाँ बोलो बेटी, दूध कैसे पिलाती है बच्चों को? हाँ मां, किसमें? हाँ, एक सिद्धांत आज और सीख लो, छोटे बच्चे की, डबल बच्चे की माँ आप भी याद करके सुन लेना सीमा। क्या? बच्चा जब माँ का दूध पीता है ना, तो बच्चा माँ के मुंह को देखता है। और माँ बच्चे के मुंह को देखती है और दूसरों दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। इसलिए बच्चा अपनी माँ को 100 के बीच में पहचान लेता है, अपनी माँ का चेहरा देखे मुस्कुराने लगेगा, दूसरी माँ को देखेगा बचपन में डाय नहीं समझेगा, उसको पता नहीं है ना माँ तो एक ही दूध पिलाती है, बाकी सब डरेगा, लेकिन अपनी माँ को पहचानता है कि नहीं पहचानता है 100 के बीच में। अब आप सिद्धांत को सुन लीजिए, हमारे जाने का टाइम हो रहा है, ये हिल हला कर रहे हैं, गाड़ी आने वाली है, लेकिन ये बात आपको जरूर बतानी है। ये समझ लो बोतल है मेरे को आपने दे दी है पीने को, अब मैं छोटा बच्चा हूँ 1 साल का, 1 साल को तब कोई नहीं पिलाता है, 6 महीने का बोतल पीऊंगा तो मैं इस बोतल को देखूंगा, बहुत मुस्कुराऊंगा बोतल की तरफ और मेरा बोतल के साथ इतना अच्छा रिलेशन हो जाएगा कि 10 साल का बनते ही बोलूंगा 20 रुपया दो कोको कोला पीऊंगा। बोला क्यों? बोला आपने मेरे को बोतल से प्रेम जलाया और 22 से पहले परमल छाप वाली बोतल से अपना जीवन आरंभ करेगा, कि आपने बोतल ही दिखाई और 45 से पहले अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल देखेगा। अरे नहीं माँ बच्चों को प्रेम से दूध पिलाओ, इसलिए पुराने जमाने में दूध पिलाने वाली माता को बहुत बड़ा माल खिलाया करते थे, सास माँ उसके लिए बड़ा गूंद और घी और ऐसे राब राब बनाती थी, दूध ही दूध बने के बच्चे हमारे दूध पिए। तो दूध बच्चों को प्रेम से जितना माँ पिलाएगी उतना बच्चे का और माँ का घनिष्ठ संबंध होगा, इसलिए माँ के दूध की बहुत बड़ी महानता और महिमा हुआ करती थी। और माँ कहा करती थी मेरे दूध की लाज रखना मेरे बेटे। तो ये सब मर्यादाएं बचपन में सीखनी चाहिए, भागवत से सीख रहे हैं हम, अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, भागवत में ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो दोनों बच्चों के लिए हम तो भगवान श्री राधा कृष्ण से सीताराम जी से प्रार्थना करते हैं, श्री गौर नेता ऐसे के छोटे बालक अभी से भगवान का कीर्तन आपसे करा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से इन्होंने अपने पहले जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और पाप क्षीण किए हैं, और हम आप इतने सारे बड़े लोगों को इकट्ठे करके भगवान की कथा कीर्तन सुना रहे हैं, और एक माता पिता का भाग्यशाली अच्छी तरह से पालन पोषण करना और अच्छे से अच्छा इनके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भविष्य देखना, और आप सब भी आप आए हो तो इनके लिए प्रार्थना करना भगवान को कि हम सब इतने आए हैं तो निश्चित रूप से भगवान इन बालकों को आप अपनी भक्ति दीजिए, शुद्ध अच्छी मति दीजिए और भविष्य इनका उज्ज्वल हो, ऐसी इनके ऊपर कृपा कीजिए, यही उद्देश्य है इसके मनाने का। अब प्रभु जी आगे थोड़ा कीर्तन कथा करेंगे, हमारा ट्रांजिट है, जाना पड़ेगा अभी, हम आप सबसे आज्ञा लेते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। छोटे लाला और लाली कहाँ गया? ये है हमारा कुंज बाबा, श्री कृष्ण, वो कहाँ है? दूसरा माला ठाकुर जी की माला ला, छवि को माला पिला दो, पहना दो। छवि हरे कृष्ण बोलो, आपकी माला रोना मत, हरे कृष्णा। ये बहुत अच्छा किया, बेटी बाप से प्रेम करती है और बेटा माँ से, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जुग जुग जियो, भगवान के भक्त बन के सब दूध पियो और मक्खन खाओ, चलो हरे कृष्ण।
ठीक है,
हरे कृष्ण कीर्तन शुरू करो।